to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਥਲੀਟ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਉਜਵਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/citizenaward ਤੇ ਜਾਓ।
Sodi Furniture Store Clearance. Saving, saving, saving.
Sale, sale, sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture. Naya Saal Naya Furniture, 905-874-7171. Sodi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजर्स कॉस्मेटिक्स की, बड़े ब्रांड्स की, बड़ी सेविंग्स वाली, बड़ी क्रिसमस वेयरहाउस सेल खास आपके लिए आ रही है। वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन पर्सेस, लगेज, डिजाइनर सन ग्लासेस, नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ। 80% तक की सेविंग्स रहेगी। बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम। ध्यान रहे, सेल इज फ्रॉम November 16 टू December 8, फ्राइडे, सैटरडे और संडे से मंडे। Lisa's Warehouse Sale, yani zyada savings for less. Visit lisascosmetics.com. इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773, 6472903773।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
ए छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरा, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस को बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कर पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416 7447534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है, एक जगह जो शुमाली तानों को जुनूबी अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। वो जगह जहां कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के पहले प्लांट्स में करीब $44 बिलियन की नई सरमायाकारियां हुई हैं, जहां ज्यादा लोग काम करके ज्यादा तनख्वाह कमा रहे हैं। वो जगह है ओंटेरियो। ontario.ca/rebuildingoureconomy पर मजीद आएं। हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदायगी करदा।
Amex Travels 5-star Hajj packages. आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing Hajj app के हाथों परेशान मत हों। नियत आपकी, बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का। Air tickets मदीना, मक्का, मिना टेंट, अरफात कैंप, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ। Limited seats, call Amex Travel.
Elite Hajj 2025 packages exclusive. Special deals for US, Canadian, Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ जो हैं वो गर्मा गर्म और रंगारंग खबरें लेकर शाजिया मलिक साहिबा अपने चार फॉलोअर्स के साथ शामिल हैं और इस वक्त कुछ बिजी हैं। अपने फॉलोअर्स को एज यूजुअल जो है वो हेलो आई कर रही है और उनसे कह रही है कि जनाब आइए आप फौरन से टीवी लगा लो, रेडियो लगा लो ताकि मैं एयर पर आने लगी हूं। ये हो गए उनके सारे मैसेजेस। आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी।
वैसे ही
जैसा कल छोड़ा था वैसे ही। आपके हालात बदल रहे होते हैं, आप बताइए।
मेरे तो रोज़
आज तो बुखार नहीं था।
नहीं आज नहीं है आज, लेकिन वैसे ही दिल के मामला ठीक नहीं है। ये आरफा बाजी को मैंने बड़ी दफा कहा, ये दांतों के डॉक्टर और ये आंखों के, ये छोड़ो दिल का डॉक्टर।
दिल का डॉक्टर लाएं।
यस, दिल का डॉक्टर वो ढूंढती नहीं है। तो हमारे तो हालात ऐसे ही है, हम तो खराब।
दिल का मसला है,
दिल का मामला है।
दिल का मामला जो है ना वो आसानी से हल होने वाला नहीं है। हाँ। क्योंकि अब वो उम्र भी बहुत हो गई ना।
हाँ। असल में मसला ये है,
मसला ये भी है ना,
मसला ये
अगर उम्र कम होती है तो थोड़ा बहुत फिर भी डॉक्टर
कर लेते हैं। हाँ, तो वो फिर बचाने की
कोशिश कर लेते हैं। अब तो कहते यार दुनिया देख ली,
जान छोड़ो यार,
जाओ
आप जाओगे तो दूसरों की बारी आएगी।
बारी आएगी ना, मतलब आप जो है वो सारा जो है वो खबरें खुद सुना देंगे।
हाँ, अब हर महकमे में आप जनरल लगा देंगे, दूसरों को जॉब कैसे मिलेगी, है ना। वैसे ही अब आप जाओगे नहीं तो दुनिया में बाकी के बच्चे जो है उनको आपकी जगह कैसे मिलेगी।
नो कॉमेंट। देखो मेरे दोस्ती है,
तुम्हारी दोस्ती,
आई हैव नो कॉमेंट।
तो तुमने तो बदनीयती दिखानी
थी। बदनीयती नहीं, नो कॉमेंट, इसमें बदनीयती है। आई हैव अ राइट टू से नो कॉमेंट।
अच्छा अच्छा अच्छा,
जमहूरियत है भाई।
हाँ, वो जमहूरियत चल रही है, हम देख रहे हैं। बहुत ज्यादा ही कुछ नहीं चल रही है, जमहूरियत
अच्छी चल,
भाग रही है, घोड़े पे तेज भाग
चल रही है। हाँ। बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड जा रही है,
फास्ट फॉरवर्ड
तरक्की कर रहा है।
हाँ।
जरिए मुबादला के जखायर बढ़ते जा रहे हैं।
अच्छा,
इन्फ्लेशन नीचे आती जा रही है।
हाँ।
और क्या, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है।
हाँ।
अब और क्या चाहिए।
अच्छा, ये जो फिगर्स है ना इन्हीं के ऊपर आप जैसे सियाणे जो है, आप जैसे सियाणों के लिए खबरें शुरू करने से पहले जी मैंने बड़ी जबरदस्त, आमिर जैसे सियाणों के लिए ना ये बड़ी जबरदस्त किस्म की मैंने एक ये खबर निकाली है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो है, दुनिया जो है, ये ट्विस्ट कैसे करती है ना, ये जो फिगर्स वाले, ये जो यानी कि जो मैथ्स वाले लोग है ना, ये ट्विस्ट कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब आप सुने आमिर साहब, आपको सुनना पड़ेगा, अपना फोन नीचे रखो, फोन नीचे रखो और आराम से सुनो। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि ये जो है एक सीईओ है बहुत बड़े, ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है इंडिया जीडीपी इन 2024 वाज अप्रोक्सीमेटली $4 trillion।
अच्छा
ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हर इंडियन की 2,800 यूएस डॉलर्स होनी चाहिए, विच इज ह्यूज, राइट? अच्छा, अब वो कहते हैं जी इस 4 ट्रिलियन में से अंबानी एंड अदानी कंबाइन द वेल्थ ऑफ 200 बिलियन यूएस डॉलर्स.
क्या बात.
ठीक है जी. उसके अलावा इंडिया के जो 10 वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स, अब ये कंपनीज नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 10 वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल्स जो है उनके पास है 420 बिलियन यूएस डॉलर. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद टॉप 200 जो इंडिविजुअल्स हैं हिंदुस्तान में उनके पास 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हैं. द टॉप 100 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.6 ट्रिलियन उनके पास डॉलर्स हैं. ठीक है. द टॉप 500 जो है उनके पास 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है. अच्छा जी, अब आप देखें, अब ये चूंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट है और ये इंडियन ही है, अब इसने ब्रेक डाउन किया है, क्योंकि हमारा तो जो मैथमेटिक्स है वो जीरो बटा सन्नाटा है ना
जी.
तो ये मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ी है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है. अच्छा, ये कहते हैं इफ वी एक्सक्लूड अंबानी एंड अदानी इंडियाज पर कैपिटा वेल्थ ड्रॉप्स टू 2,700 यूएस डॉलर्स. ठीक है. एक्सक्लूडिंग द टॉप 10 इंडिविजुअल्स इट फॉल्स टू 2,500 यूएस डॉलर्स. एक्सक्लूडिंग द टॉप 200 इट ड्रॉप्स टू 2,150 डॉलर्स. एक्सक्लूडिंग 1% टॉप इंडिविजुअल्स इट कम्स डाउन टू 1,730 डॉलर्स. Excluding the top 5%, it sinks to 1,130. And that figure is below the per capita income of most sub-Saharan African countries. तो भाईजान, ये आपको
एक जुमला था,
मैथ समझ आई?
नहीं, एक जुमला था, वो मैं बताऊं. कहना क्या चाहती हैं?
कहना ये चाहते हैं कि ये जो 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है ना, ये 4 लोगों के पास वेल्थ है,
वो 4
ये नीचे वाले लोगों के पास नहीं है.
कंबोडियन है वो?
हाँ, वही वो कह रहे हैं कि सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना, उनका है इतना जीडीपी, जिस पे आप बहुत खुश हो रहे हो और आप कैलकुलेट कर रहे हो.
गवर्नमेंट जो है ना, जो लोग होते हैं ना, उन्हीं के पास पैसा होता है.
हाँ, तो 4 लोगों के पास है.
तो उससे क्या?
तो यानी कि हिंदुस्तान की जो 200 जो खानदान या इंडिविजुअल्स हैं, ये सारा 4 ट्रिलियन का चक्कर उनके कब्जे में है, नीचे ये नहीं मिल रही. और अगर नीचे इतने ये पैसे आ रहे होते ना, तो ये जो आपके इंडियन पंजाब से रोज बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं ना, ये भाग भाग के ना आ रहे होते, इनकी हालत इतनी कोई अच्छी होती, मुल्क क्योंकि स्विट्जरलैंड बन गया होता.
नहीं, मैं तो पाकिस्तान की बात है ना, तरक्की कर रहा हूँ. आई डोंट केयर कि इंडिया में क्या हो रहा है, मैं पाकिस्तानी.
नहीं, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि पाकिस्तान की इस तरह की मुझे फिगर्स बताओ.
पाकिस्तानी मैं फिगर बता देता हूँ. इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में आ गया, और जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है,
ऐसे बताओ.
ये भी मैं आपको निकाल के दे दूंगा. मैं बेसिकली जबान ही याद है ना मुझे, मुझे देख के पढ़ना नहीं पड़ता.
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी.
मैं देख के, मैं ये मोबाइल खोल के देख के कहा, मैं ये सब चीजें जबान ही याद है. नंबर आपने कहा था आपके अंडा बटा 0 है, मैं तो आउट ऑफ 100 100.
अच्छा अच्छा.
हाँ हाँ, मेरे को मसला ही नहीं, मुझे जबान याद रहते हैं.
अरे वाह, क्या
नंबर्स का तो गेम है. आप कैसे कह रही हैं जी?
देखिए
जो स्टॉक मार्केट है, तो देखें
1,000 पर टच कर रही है जी,
लाख का पॉइंट ऊपर क्रॉस कर दिया है. ये सब यहाँ 5% होती है अमरीका में, कैनेडा में, बट ये फैक्स इतना ऊपर चला गया. हाँ, SMC इतना ये हो गया,
चिंदी जोरियां हैं.
तो भाई पाकिस्तान, एक दो चार पाकिस्तान के, अगर दो चार बड़ों के नाम ले लिए ना मैंने.
हाँ,
ये सब अंबानी अडानी
ये सारे इधर ही रह जाएंगे धरे के धरे.
बेकार का बात, ऐसा नहीं. हम जाहिर नहीं करते.
अच्छा,
ऑन स्पॉट जाके देखें आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो लोग बिलीनियर्स हैं, वो जब पैसे बांटते हैं या जो पैसे अपना दिखाते हैं
चैरिटी में,
चैरिटी में देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने अमीर हैं.
लेकिन आमिर, मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ. मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, एक ऑस्ट्रेलियन कराची गया हुआ है भाई. क्या उसने कराची को कवर किया है, क्या वो जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं और ये और वो जो बन गए हैं, है मैं तो हैरान हूँ. फिर वो लाहौर गया, कहता है लाहौर की तो आप मेट्रो देखो कितनी जबरदस्त है और ये और क्या तरीके.
फिर वो बात आप कहती ना, 2,000 USD जो है वो वो जो इंडियंस है वो पर कैपिटा इनकम बनती है. मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों की चाहे 800 बनती हो, लेकिन दे आर हैप्पी. दे नो हाउ टू लिव हैप्पी, इतने मसाइल के बावजूद भी ये जो लोग हैं, मैं कौम नहीं कहता, ये जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से धकेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे। वहाँ खुदा ना खास्ता जो है वो खाना जंगी नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं है, कोई बैंक नहीं लूटे जा रहे, कोई बिल्डिंगे नहीं जलाई जा रही, कोई इदारे नहीं लूटे जा रहे, ठीक है ना।
जो हर हुआ था यूएस में हुआ था जो,
जी हर चीज जो है वो फ्लॉइड का हुआ था, ठीक है, सियासी मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन ये जो वहां के रहने वाले लोग हैं जिसे पाकिस्तानी कहते हैं वो बहुत रेजिलिएंट है, उनको पता है कि कैसे जीना है, उनको जरा सा अच्छा एक लीडर मिल जाए, को आगे चीजें मामला तय हो जाए, तो ये 2000 पर कैपिटा क्या, हम 3000 पर कैपिटा,
नो वरीज
ये थे नंबर एक्चुअल।
वाह वाह वाह, आमिर इतनी मैं तुमसे इंप्रेस हूँ, कसम से मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे कितनी इंप्रेस हुई हूँ।
ओहो
क्या बात है तुम्हारी, अरे वाह वाह गुरु जी, आज से मैंने आपको गुरु मान
लिया। नहीं मैं देख के नहीं, नंबर याद रखता हूँ, नंबर याद रहते हैं,
नंबर याद रहते हैं, ठीक है ठीक है, गुरु जी मैंने आपको गुरु माना सर। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। तो राजा बादशाह तो आपको पता है आमिर के यार हैं, आपने राजा बादशाह के पास जाना है और आमिर अहमद का नाम लेना है, ठीक है जी। तो फिर आपको ये 1775 डॉलर्स बचा के देंगे, और आपको कहते हैं जी कि अगर आपको अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल करें एट 6472903773। ऑन्टारियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में। मिसेस सागा का नंबर है 9052323663, ओकविल का नंबर है 9052262294, ठीक है। और जनाब चोपड़ा ज्वेलर्स पे वो कहते हैं बहुत ही एलिगेंट यूनिक स्टाइलिश वैरायटी के ज्वेलरी है, अगर आपका कोई भी इवेंट आने वाला है फैमिली में तो आपको उसके लिए ज्वेलरी चाहिए, आप इनके पास जाएं। इनका नंबर है 4167447534। एंड जनाब असलम बॉय पायल ज्वेलर्स पे होते हैं, उनके पास जाओ आप, बहुत जबरदस्त इनके पास भी 22 कैरेट गोल्ड की जो है ज्वेलरी है जो कि वो लेकर आए हैं दुबई पाकिस्तान सिंगापुर से। तो आप इनको कॉल कर लें जी एट 9057907879 पे, ठीक है जनाब। चलो जी अच्छी चलिए अपनी आप कहानियां की तरफ। कहानी सबसे पहले जी है जी कि कनेडा ने 324 यूनिक फायर आर्म मेक्स एंड मॉडल्स जो है इनको भी, जिनको कहा जाता है असॉल्ट स्टाइल फायर आर्म्स, अब इनको प्रोहिबिटेड वेपन्स की लिस्ट में डाल दिया है इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी कि आज अनाउंसमेंट किया तो आज से ही इफेक्टिव है। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये जो गोल है हमारा वो ये है कि हम अपने जो फैमिलीज और कम्युनिटी है उनको हम ये जो डेवस्टेटिंग शूटिंग होती है इससे हम जो है दूर रख सकें और रिस्ट्रिक्ट कर सकें इन वेपन्स को कि ये हॉरिबल क्राइम्स हमारी कम्युनिटीज के अंदर ना करें। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा 1500 मॉडल्स के जो ऐड किए गए थे 2020 में, तो उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा रोबस्ट कंसल्टेशंस की थी आरसीएमपी के जो फायर आर्म्स एक्सपर्ट थे, और हम अब एक एमनेस्टी ऑर्डर डाल रहे हैं। एमनेस्टी ऑर्डर मतलब है कि आपको डेट दी जा रही है अंटर अक्टूबर 30, 2025, इसके बीच अगर किसी भी इंडिविजुअल्स के पास जो हैं ये इस तरह के असॉल्ट मॉडल के राइफल्स हैं या चीजें हैं ये जो हैं दे दें वापस गवर्नमेंट को। और वो कह रहे हैं जी कि नेक्स्ट इलेक्शन के आने से पहले भी जो है आप ये इसको बिल्कुल 10 डेज आपके पास होंगे आफ्टर मैंडेटेड जो है वो नेक्स्ट फेडरल इलेक्शन उसके बीच में भी आप ये दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये पुलिस को आप दे सकते हैं सारे के सारे ले जाके। और वो कहते हैं जी इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं बिल ब्लेयर साहब, वो कह रहे हैं जी कि हमने ये जो असॉल्ट टाइप के राइफल्स जो चीजें जो वेपन्स हमने दिए थे यूक्रेन को उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि पायन ये हमें जो है आप ये जो हमारे फायर आर्म्स जो है आप हमको वापस करो। तो मतलब इसके अंदर जो है ये काफी प्रॉब्लम्स जो हैं चल रही हैं। हम जीशान जरा दिखा दें इनकी हमारे जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉ की तस्वीर ताकि लोगों को पता चल जाए जी कि ये ऑर्डर किसने दिया। ये हैं जी हमारे मिनिस्टर साहब जिन्होंने आज ये ऑर्डर दिया। स्टैट्स कनाडा जो है जी उसकी आज खबर आई है और उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जंप कर गया 6.8% पे नवंबर में, और लोग जो है बेशुमार नौकरी ढूंढ रहे थे क्योंकि जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। वो कहते हैं जी जॉबलेस रेट जो है नवंबर में हाइएस्ट था सिंस जनवरी 2017 और आउटसाइड ऑफ पेंडेमिक, और उन्होंने कहा जी कि जॉबलेस रेट अक्टूबर में 6.5% था जो कि जंप किया। इकोनॉमी जो थी उसने हालांकि नवंबर के अंदर 51,000 जॉब्स मोस्टली फुल टाइम की, लेकिन फिर भी जॉबलेस रेट जो है आगे रहा। बैंक ऑफ कनाडा का अभी नेक्स्ट वीक में वेंसडे को आने वाला है जो है अनाउंसमेंट इंटरेस्ट रेट का, जिसके ऊपर फोर्ड की गवर्नमेंट और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप ये रेट बढ़ाओ मत, और एक्सपेक्ट वैसे तो दूसरे करते हैं कि ये रेट अपना कम रखेंगे, लेकिन ओंटारियो की गवर्नमेंट ने वैदविक फिडेली जो है इनके फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे ऑन्टारियो के, उन्होंने कहा जी के इस रेट्स को मत बढ़ाएं। 46.3% अनएम्प्लॉयड थे नवंबर में, इसका मतलब है कि वो ना तो लास्ट ईयर काम कर रहे थे और इस साल भी उन्होंने काम नहीं किया है, फ्रॉम 39.5% अ ईयर अगो यानी कि 2023 में। एवरेज आवरली वेज जो है वो कहते हैं जी ऊपर गई है 4.1% 2023 में, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो स्लो रही अक्टूबर के महीने से ऑनवर्ड्स जो है देखी जा रही है। सर्विस कनाडा ने जनाब आज एक प्रेस रिलीज निकाली है और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर आपके पासपोर्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि 185,000 के करीब जो पासपोर्ट्स अगर आपके जो हैं फंसे हुए हैं तो वो कुछ अरसा शायद फंसे रहेंगे। उसकी वजह यह है कि कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक चल रही है, लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया, उन्होंने कहा कि अगर आपको अर्जेंटली पासपोर्ट चाहिए तो आप कॉल करें 1-800-567-6868 या कि आप खुद से विजिट कर लें सर्विस कनाडा का एक लोकेशन और अपना पासपोर्ट जो है वो ले लें फ्रॉम वन ऑफ द 60 लोकेशंस। वो कह रहे हैं जी कि लेकिन आपको इसके लिए प्रूफ ऑफ ट्रैवल प्लान्स और अर्जेंट नीड आपकी क्या है उसके पेपर्स आपको फौरन लेके आने पड़ेंगे। कनाडा पोस्ट और यूनियन के बीच में डील नहीं हो सकी चुकी है। फेडरल मिनिस्टर जो है लेबर मिनिस्टर स्टीवन मैकिनन वो जो थे इनके बीच में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दी थी मीडिएशन। उन्होंने कहा जी कि दोनों पार्टीज बहुत दूर दूर हैं, कोई उनके बीच में जो है अग्रीमेंट का कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था पहले तो खुद ही कि आप भी मीडिएशन करो, ये जब मिनिस्टर साहब बैठे तो भी उन्होंने कोई बातचीत जो है उसका हल नहीं निकाला। बैंक्स जो है, लेकिन वो आमिर साहब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने बिल नहीं दे रहे। बैंक्स कह रहे हैं कि हम आपकी कोई ये बहाने और एक्सक्यूजेज नहीं सुनेंगे कि हम अपने बिल नहीं दे सके क्योंकि कनाडा पोस्ट से हमको बिल नहीं आया। ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच टू ऑनलाइन स्विच करें। और तमाम म्यूनिसपैलिटीज भी कह रही हैं कि ऑनलाइन स्विच करें और अपने बिल्स जो हैं वो आप वक्त पे दें, और अगर आपने वक्त पे ना दिया तो आपको लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज जो है चार्जेस भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा आपको पेनल्टीज भी डाली जाएंगी फॉर पेइंग लेट। इसके अलावा वो कहते हैं अगर आपको कोई चेक जो है वो देने हैं तो आप अपने बैंकों में जाके दे सकते हैं या इन पर्सन किसी भी सिटी हॉल में जाके दे सकते हैं। 80% कैनेडियन स्मॉल बिजनेसेस जो है वो यूज करते हैं कनाडा पोस्ट को। हाँ ठीक है, अल्टरनेटिव कुरियर कंपनीज हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू कनाडा पोस्ट। तो अब पीपल आर नॉट श्योर के वो दूसरी कुरियर सर्विस की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। ये जो स्ट्राइक है उसकी वजह से स्मॉल बिजनेस का, सुनो जरा आमिर, $76 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है और ये तीसरा वीक चल रहा है, थर्ड वीक जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जनाब पुरोलेटर और यूपीएस जो है, अब चूंकि जाहिर है अब इन लोगों की भी सर्विसेज जो है लोग यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जो कुरियर कंपनीज जो है उनको बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई आप हमको इतनी ज्यादा डिलीवरीज मत दो क्योंकि कनाडा पोस्ट की जो स्ट्राइक चल रही है उससे हमारे लिए बोझ बहुत बढ़ गया और हम जो है लोगों को नहीं पहुंचा सक रहे हैं। पूरा लेटर ने तो अपनी प्रेस रिलीज में आज कहा है कि एक तो वेदर बहुत सीवियर हो गया है और ये जो पैकेज का जो वॉल्यूम है ये बेताजा बढ़ गया है, तो इसलिए हम बिल्कुल अपनी सर्विस फ्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल नई हम अब शिपमेंट्स नहीं आपसे मतलब नई पैकेजेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्रिटिकल शिपमेंट्स जो है। इसके साथ साथ जो ई शिपर है, ये जो एक कुरियर कंपनी है जो मिडल मैन का काम करती है फॉर स्मॉलर ई कॉमर्स बिजनेस वालों के लिए और लार्ज कुरियर कंपनीज के बीच में, उन्होंने भी कहा जी कि हम जो उनको उसको बताया गया है पूरा लेटर और यूपीएस की तरफ से कि बिल्कुल टेम्परेरली तुम कुछ भी जो है वो एक्सेप्ट करना बंद कर दो। शिपमेंट्स जो है वो कहते हैं जी कि ये हम जो है कोई भी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स जो है कोई भी नहीं करेंगे, यानी कि कुछ भी डिलीवरीज नहीं करेंगे और कार्गो जो है उसको हॉल्ट किया गया है और पोस्टल जो स्ट्राइक है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है अब हॉलीडे सीजन में भी नुकसान हो रहा है। लोग बोल पूछ रहे हैं कि भाई हम अपने कार्ड्स कैसे भेजें, तो लोगों को सजेस्ट किया गया है कि भाई ई कार्ड्स भेजो व्हाट्सएप पे या कि ईमेल के थ्रू। कनाडा पोस्ट जो है वो कह रहे हैं जी कि हम अपने न्यू एक काउंटर प्रपोजल हमको यूनियन ने दिया है तो हम उसको देख रहे हैं। कनाडा पोस्ट में तकरीबन 55,000 एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं, 3 हफ्ते से वो काम पे जो है वो नहीं जा रहे हैं कि स्ट्राइक पे है क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारे एक तो वेजेस बढ़ाए जाएं और हमारी कंडीशन जो वर्क की कंडीशन जो है, जाहिर है कि हर किसी के कंसर्न है भाई, चीजें इतनी महंगी हैं। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि ग्रोसरीज अगले साल जो है $800 जो है जो उसका बिल जो ज्यादा हो जाएगा, बीफ चिकन गोश्त सब और हलाल चीजें तो ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो लोग कहां से पैसे लाएंगे जब उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अच्छा जनाब, आज बेल्जियम जो है उसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट आई है और फाइंड किया गया है कि बेल्जियम जो है उसने बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए थे फॉर सिस्टमैटिक किडनैपिंग ऑफ किड्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल ईरा ऑक्यूपेशन ऑफ कांगो। 5 औरतें जो हैं जो कि अब अपनी 70s में हैं, वो कहती हैं जी कि हमको बेल्जियम स्टेट ने किडनैप किया था 1948 से के बाद से और यही जो थी ये लेकर आई थी, ये जो था एक प्ली लेकर आई थी, यानी कि एक फाइल किया था उन्होंने, केस फाइल किया था उन्होंने। कहा जी उस जमाने में बहुत ज्यादा ये कॉमन प्लेस था कि ये ड्यूअल हेरिटेज के जो बच्चे थे इनको अगवा किया जाता था और इनको थ्रेटन क्योंकि समझा जाता, इनको थ्रेट समझा जाता था कि ये व्हाइट सुप्रीमेसी जो है उसको ये खत्म करेंगे और अपनी कॉलोनाइजेशन जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए इनको किडनैप किया जाता था। अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी पता ये चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो है वो उनको फोर्स तरीके से पुलिस ने रिमूव किया था और उनको दूर रखा था अपनी फैमिलियों से कई दहाइयों तक। और ये जो इलाके जिनसे के इन्होंने बच्चे अगवा किए थे, किडनैप किए थे, वो अब आजकल के जमाने में बनते हैं कांगो, रुवांडा, ब्रुनुडी। 2017 में कैथोलिक चर्च जो था उसने कांगो से माफी मांगी थी, 2019 में बेल्जियन गवर्नमेंट ने भी माफी मांगी थी, 2020 में बेल्जियन किंग जो है उन्होंने भी कहा था मुझे इस चीज का बड़ा खेद है, और जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसने आज डिस्क्राइब किया है कि ये जो क्राइम्स थे इनह्यूमन थे और प्रोसिक्यूशन क्राइम्स जो थी वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो भाईजान ये चीजें आपको इसराइल में क्यों नहीं नजर आ रही, वो जो कर रहे हैं पैलेस्टाइन के खिलाफ हैं जी, तो वो भी तो लोगों को मार रहे हैं ना, तो उसके लिए आप वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है, नहीं है जी, वो इसका जवाब है कि नहीं है। अच्छा जी, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है सर्जे लेवरोव, आज उनकी डायरेक्ट किस्म की लड़ाई हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ एट एनुअल सिक्योरिटी मीटिंग इन माल्टा, जिसमें कि उन्होंने एक्यूज किया वेस्ट को कि ये जो है वॉर को बढ़ावा दे रहा है यूक्रेन में। ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ओएससीई की मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ताकुली में चल रही थी, जिसमें कि लेवरोव ने कहा कि ये वेस्ट जो है रिवाइव कर रहा है कोल्ड वॉर को और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें रशिया के साथ एंटर हो, यानी कि रशिया के खिलाफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो रहा है। यूएस जो है वो चाहता है कि नेटो जो है उसको बिल्कुल पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में लेकर आ जाए, और इनको जो है अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिसग्रेस किया गया था यूएस को, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका न्यू एनिमी जो है वो कौन है। इसके बाद इससे पहले कि ब्लिंकन साहब इसका जवाब देते या दूसरे कुछ डेलीगेट्स बात करते, लेवरोव साहब जो है छोड़ के चले गए। अब इस चीज के लिए ब्लिंकन साहब ने इनको बहुत ज्यादा ब्लेम किया, उन्होंने कहा जी एक तो आप ना मेरी बात सुनने को तैयार हो ना जो इधर दूसरे डेलीगेट्स बैठे हैं उनकी बात सुनने को तैयार हो, तो आप एस्केलेट तो कर रहे हो वॉर को रशिया के अंदर, और आपने ये बात की है लेवरोव साहब कि यहां पे लोगों का सॉवरन राइट होना चाहिए टू मेक देयर चॉइसेस, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के लोग और उनके जो कंट्री है उसको अपनी च्वाइसेज मेकने का, अपने फ्यूचर बनाने का बिल्कुल हक होना चाहिए, जो कि मॉस्को नहीं करने दे रहा है। ये जो 57 नेशन बॉडी है ये कोल्ड वॉर के बाद फॉर्म की गई थी, लेकिन जाहिर है कि इसका हिस्सा जो है वो रशिया भी है, और रशिया में जब भी कभी मतलब ब्लॉक में कोई इसमें बात आती है ओएससी में तो रशिया जो है इसको वीटो करता है, तो उसकी वजह से ये यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी पैरालाइज्ड है। तो भाईजान ब्लिंकन साहब, अगर यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन को हक है टू मेक देयर ओन चॉइसेस अबाउट फ्यूचर, तो आपका क्या कहना है गाजा के लोगों का, जिनका के मुल्क है जिसपे के कब्जा करके इसराइल बैठा हुआ है जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जाहिर है कि उसका जवाब है कि उसके बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है। मैं आपकी तरफ से जवाब दे रही हूं ब्लिंकन साहब, आप तकलीफ ना करो, आप बहुत बड़े बंदे हो, हैं ठीक है। अच्छा जनाब, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी केड़ी है जनाब? जर्मनी। देखा छोटा सीख गया, जर्मनी के अंदर जो है बहुत ज्यादा अजाब आ रहे हैं, और जाहिर है कि वो अजाब जो है वो पूरे यूरोप में फैलेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर में बेतहाशा गिर गई, और ये फोर्थ क्वार्टर था जिसमें कि ये डिक्लाइन आया है, और ये यूरोप की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो स्लो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो डिक्लाइन आ रहा है उसकी वजह से ये सारा हौले हौले अब हौले हौले से दुआ जी, तो हौले हौले से ये दुआ जो है ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी मिलती जाएगी, यानी कि डिक्लाइन आएगा। इनका जो आउटपुट है वो डिक्रीज किया है 1% फ्रॉम सितंबर, हालांकि सोचा जा रहा था कि सितंबर में 1% इनका आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा। इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका जो बेड़ा गर्क होता जा रहा है उसकी वजह से ये वीकनेस आती जा रही है। फोर्थ क्वार्टर का जो वीकनेस है वो और ज्यादा डीप अब होगा क्योंकि विंटर रिसेशन जो है देखा जा रहा है जर्मनी के अंदर। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा नीचे 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 आ रहा है, और जर्मनी की जो इकोनॉमी है इट इज हेडेड फॉर सेकेंड स्ट्रेट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि कहते हैं कि दो अगर क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन आए तो रिसेशन होता है, तो ये तो अब दूसरा साल है जिसमें इनका आ रहा है, तो जाहिर है मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये इनके मुल्क में रिसेशन है। जीडीपी जो है वो कहते हैं जी कि 2025 में और ज्यादा श्रिंक करेगा, इसलिए के टी राम साहब ने
कहा है कि मैं टेरिस लगाऊंगा। हैं जी, हुण पाया मैं केड़े पासे जावां ते मैं मंजी किथे डावां, ये है असल में क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ तो ये ऐसे है, तो ये अब टैरिफ्स आएंगे तो ये इकोनॉमियां मरेंगी। तो जैसे कनाडा के हमारे जो है ट्रूडो साहब ने भी जाके अभी जो मारालागो में जो मिले हैं ना ट्रंप साहब से, उनको यही कहा है कि प्लीज टैरिफ्स मत लगाओ, कनाडा की इकोनॉमी मर जाएगी। तो आगे से ट्रंप साहब ने क्या कहा कि तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमसे फायदा लेते हो उसका क्या है जी, बड़ी चिल्लाक है, बड़ी चिल्लाक है ट्रंप साहब, है जी ऐसे। अच्छा जी, आप दो यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सऊदीया को, सऊदी अरेबिया को कहा है कि तुम जो ये एग्जीक्यूशंस करते हो इसको रोको, खासतौर पे जो तीन फॉरेन नेशनल्स का तुम अभी एग्जीक्यूशन करने लगे हो ये मत करो। सऊदी अरेबिया में इस साल में अभी तक 300 एग्जीक्यूशंस हो चुकी हैं और चार मोर जो हैं वो अभी डेथ रो पे हैं। तीन कॉन्विक्ट्स जो हैं उनके बारे में सऊदीया ने कहा कि उन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग किया था और जो चौथा है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, सो ब्रिंगिंग द टोटल नंबर टू 303। तो अब जैसे 104 होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं अब जी कि ये जो है तकरीबन 200 डेथ पेनल्टीज जो थी वो सितंबर के एंड तक दी गई थी। यूनाइटेड नेशंस के ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं बट इनको मैंडेट किया गया है बाय द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मगर ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसके बिहाफ पे बात कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि मत दो इनको मौत की सजा, तो अब पता नहीं है क्या करेंगे। प्रिंस साउद बिन तलाल बिन बदर जो हैं गवर्नर ऑफ अल अहसा, उन्होंने जनाब आज लॉन्च किया है एक ट्रायल, द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बस इन सऊदी अरेबिया जो कि ट्रेवल कर सकती है 635 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज और ये अकोमोडेट कर सकती है 45 पैसेंजर्स को। बिग डील, बिग डील, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन पावर्ड बसेज और गाड़ियां चल गई तो फिर आपको पेट्रोल की, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो भाईजान, व्हाट इज दिस है, ओपेक के सबसे बड़े आप जो है वो हो ठेकेदार, तो ये क्या कर रहे हो। भारत जी ये कहते हैं जी कि ये जो बस है ये ऑपरेट करेगी दमान और अल अहसा गवर्नरेट के बीच में। जो लॉन्च हुआ उसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिखाई गई जिसमें कि बताया गया कि ये काम कैसे करेगी, इसमें फ्यूलिंग कैसे होगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो किए गए हैं और इसकी वजह से कार्बन एमिशंस में बेतहाशा जो है वो जो है गिरावट आएगी। ऑफिशियल्स जो है फिर वो बस में बैठ के उन्होंने एक टूर भी लिया। हाइड्रोजन पावर्ड बसेस जो है दे आर अ क्रूशियल स्टेप रियलाइजिंग किंगडम्स विजन 2030। ठीक है जी, तो वो जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन है उसकी तरफ ये एक और कदम है। और मेक्सिको की गवर्नमेंट ने कहा जी कि मेक्सिको की हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट एवर इन्होंने बस्ट किया है सिंथेटिक ओपियोइड फेंटेनॉल का जो कि क्रॉस बॉर्डर करके यूएस में जाने वाला था और वहां पे ये ड्रग ट्रैफिकिंग होने वाली थी, मगर आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने धमकियां दी हैं इनको, तो इसलिए अब ये फटोफट काम कर रहे हैं। उमर गार्सिया हारफुक जो हैं मेक्सिको के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी एंड सिटीजनशिप प्रोटेक्शन, उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटीज ने दो डिफरेंट एक्शंस किए थे कोस्टल स्टेट ऑफ सिनालोआ। ओहो, सिनालोआ जो है ना वो तो दैट इज द डेन ऑफ गैंगस्टर्स, सिनालोआ, उसमें वो कहते हैं जी एक टन ऑफ फेंटेनॉल जो पिल्स हैं वो हमने कन्फिस्केट किए हैं और इसके अलावा दो लोग जो हैं उनको भी हमने अरेस्ट किया है। और वो कहते हैं जी कि ये सिनालोआ के अंदर जिस वक्त तक ये वायलेंस और ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक हम ये जो है ऑपरेशंस करते रहेंगे। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इसके अलावा डिटेन किया है 5,200 माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स को भी जो कि चोरी छुपे इलीगली यूएस जा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है ट्रंप साहब ने थ्रेटन किया है कि मैं 25% टैरिफ्स लगाऊंगा मेक्सिको और कनाडा के ऊपर भी अगर इन लोगों ने इलीगल ड्रग्स और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको ना रोका। तो ते हुण दोनों कंट्रीज फुर्तियां दिखा रहे हैं जी, साढ़े मुल्क दे विच भी बार्डर उते हुण ड्रोन होणगे होर पुलिस वाले होणगे और ये मैक्सिको भी कर रहा है। आज जनाब वर्ल्ड बैंक ने एक ह्यूज 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 अनाउंसमेंट किया। वर्ल्ड बैंक ने आज कहा है कि उसने अभी तक 24 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो रेज कर लिए हैं, लेकिन वो लेवीज से लेवरेज करेंगे इस अमाउंट को और 100 बिलियन यूएस डॉलर जनरेट करेंगे। ये लोन्स और ग्रांट्स जो हैं पूर कंट्रीज को जाएंगे। आमिर मैं भी उनमें पूर कंट्री तो नहीं हूं, मैं पूर इंडिविजुअल का एक लिखा हूं इनके पास, भाईजान मुझे सिर्फ 1 मिलियन डॉलर कनेडियन चाहिए, मुझे ये बिलियंस नहीं चाहिए है जी, तो मैं भी लिखाने लगी हूं। अच्छा जी, जो डोनर कंट्रीज हैं वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक के उन्होंने कहा है कि 23.7 बिलियन यूएस डॉलर देंगे इनको बैंक को
फॉर कंसेशनल लेंडिंग आर्म जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बैंक जो है वो कहता है कि वो बोरो ये करके मनी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, इसको लेवरेज करेगा इस अमाउंट को टू रेज बाय अराउंड 4% जो कि 100 बिलियन यूएस डॉलर्स बनता है। वो कहते हैं जी कि दिस इज गोइंग टू बी अप फ्रॉम 93 बिलियन डॉलर्स इन 2021। इस फंड को डिप्लॉय किया गया जाएगा टू सपोर्ट 78 पुअरेस्ट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने आज ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ये कंट्रीज इन्वेस्ट करें इन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है भाईजन, ओके जी। अच्छा जनाब, बे इंतहा जो अच्छा ठहरो, पहले हम आपको ये बता दें कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय एमएक्स ट्रेवल। हज पैकेजेस ये देते हैं जी, बड़े जबरदस्त किस्म के, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और बजट वाले। और वो कहते हैं जी लेकिन आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, यानी साडा पला कितने भी ना उड़ देना तुसी भाईजान है। तो वो कहते हैं जी कि ये पैकेजेस हम उनको देंगे, तो आप जो है इनको कॉल कर लें 416-599-5200। इसके अलावा मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, आमिर जितना गोश्त खाना है खा लो, अगले साल से बिल बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने अगर जो है अपना पूरे साल के लिए गोश्त लाके और बीफ लाके जना फ्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आपको चाय, जलेबी और सिमोसा भी मिलेगा। तो आप इनको कॉल कर लें 905-286-1998। और जनाब डॉक्टर नाजिया रहमान डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, वो कहती हैं जी अगर तुम्हारे पीले दंद नहीं तो तुम मेरे को लाओ, मैं बिल्कुल चिट्टे कर देंगी। ठीक है जनाब, लेजर टीथ वाइटनिंग ये करती हैं, तो आप जाओ इनके पास। ये हैं 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट E108 ब्रैम्पटन में। इनका नंबर है 9058721100। ओपन माई कफे, आमिर का फेवरेट रेस्टोरेंट, आज आमिर उधर ही जा रहा है। तो आपको अभी अगर मुझे का खाना खाना है तो आप प्लीज जाएं 1310 स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा में। इनका नंबर है 416-526-6800। और जनाब लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट अदनान अलवी साहब, वो कहते हैं जी कि अगर आपके कोई भी मसले हैं, लाइफ इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, मॉर्गेज, तो आप प्लीज मेरे पास संपर्क करें। इनका ऑफिस है 6705 टॉमकिन रोड मिसिसागा में। इनका फोन नंबर है 416-310-0249। ठीक है जी, आप इनके पास जाएं। और जनाब लीजा कॉस्मेटिक्स, आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, प्लीज जाओ और मजे लो वहां पे जाके, बेशुमार वहां पे आपको परफ्यूम्स, चीजें, सब कुछ मिलेगा। और जो है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम के अंदर हैं, तो आप जाके पूरे साल के अपने परफ्यूम वगैरह लेकर आ सकते हैं। और दूसरी भी बेशुमार चीजें हैं इनके पास, वो भी आप ला सकते हो। और जनाब आ गई हैं सर्दियां, और स्पीयर एंड मैके पे जाएं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनके पास जो है नया सारा मॉल आ चुका है। ये नई लोकेशन पे चले गए हैं, 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट, यूनिट 7B मिसिसागा में। इनका नंबर है 9056703380। ओके जी, अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता ही है कुरम एजेंसी में बेतहाशा जो है वो क्लैशेस चल रहे थे, 133 लाइव्स जो थी वो दे लॉस्ट। और अब फाइनली ये बात आई है कि इनडेफिनेट यहां पे सीज फायर हो गया। ये उस वक्त हुआ है जब एक ग्रैंड जिरगा बिठाया गया था और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इसमें लड़ाई झगड़े अब नहीं होंगे। ये सारे का सारा जिरगा जो था ये हो रहा था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोहाट रीजनल कमिश्नर। जिरगा जो था उसके अंदर तकरीबन 100 डिफरेंट एल्डर्स जो थे डिफरेंट राइवल ट्राइब्स के, वो इसमें बैठे थे और उन्होंने सुलह सफाई कराई। केपी के जो चीफ मिनिस्टर अलीमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने पीस एफर्ट्स को की बड़ी तारीफ की। इसके साथ ही इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जो है वो अब रेस्टोर कर दी गई है। अच्छा जनाब, JUIF यानी दुनिया चांद पे पहुंच रही है, ये कह रहे हैं जी मदरसा खोल दो पाकिस्तान दे विच है, क्योंकि मदरसा रॉकेट साइंस तुहानू सिखांदा है। JUIF ने वार्न किया है आज के ये जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 है जिसके के अंडर मदरसा को रजिस्ट्रेशन मिलती है, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम ना किया तो एक लॉन्ग मार्च निकालेंगे। और इसके लिए जो JUIF के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने आज जर्नलिस्टों को लाहौर में बताया कि गवर्नमेंट जो है उसके बैड इंटेंशंस हैं, वो ये बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रही है। JUIF जो है बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी डिमांड्स, एक तो हर बंदे की डिमांड है, कम कोई नहीं करना, पर डिमांड हर किसी दिए हैं एवे। और वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि ये इमीडिएटली इसको अप्रूव करें। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और JUIF के जो अमीर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी भी बड़ी लंबी बातचीत टेलीफोन के ऊपर हुई है, जिसमें कि उन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि भाई इस बिल को आप पास कराएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल आपके ये जो भी कंसर्न्स हैं इस बिल के सिलसिले में हम उनको देखेंगे और आपका मसला जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब है पायन साढ़े हाथ नाल हाथ में लाए रखो, साढ़ा हाथ ना छोड़ना क्योंकि साड़ी गवर्नमेंट गिर जाएगी। है जी भैया आमिर साहब, सुन रहे हो आप, सही हो ना? लेकिन मुझे समझ नहीं आई, कल मैंने एक ट्विटर पर तस्वीर देखी, अब ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बेतहाशा कोई पता नहीं 1000-1200 रीट्वीट्स हुए हुए थे। ये बिलावल भुट्टो साहब क्यों जा जाके गोडे पकड़ रहे हैं मौलाना के, क्या चक्कर है ये, क्या चक्कर है ये, मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि वो सिंध गवर्नमेंट को भी बड़े अरसे से जो कह रही थी पीपीपी कि भाई जेयूआई वाले जो कह रहे थे पीपीपी पीपीवी गवर्नमेंट को कि भाई ये मदरसा बिल अप्रूव कराओ, और पीपीपी उनको जो है वो दे रही थी है ऐसे घुमा रही थी गोल गोल जलेबी की तरह, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट जरदारी जो है उनकी तो आदत ही ऐसी, उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो वो घुमा रहे थे गोल गोल। तो हो सकता है कि जेयूआईएफ ने पीपीपी के ऊपर भी जोर डाला हुए और बिलावल साहब को कहा हो पायान अपने वालिद साहब को ए बिल पास कराओ सिंध दे विच, क्योंकि अदरवाइज तो वो किसी का गोडा पकड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आमिर साहब कि वो कह रहे हैं मौलाना को मौलाना मेरा साथ दो, इस गवर्नमेंट को भी गिराओ और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, यही हालात है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में है? अच्छा ऐसे अच्छा जनाब, बुशरा बीबी जो है आज उन्होंने बड़े देर के बाद अपनी साइलेंस जो है वो खोल दी है। उन्होंने कहा जी कि मुझे डी चौक के ऊपर खाली छोड़ के भाग गए थे, तो मेरा वहां पे रहना जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा जी कि मेरा जो व्हीकल था उसका जो टायर था वो फ्लैट हो गया था, और मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जो है मैं क्या करूं, वरना मैं उस तरह की औरत नहीं हूं कि मैं अपने मियां को छुड़ाए बगैर यहां से जाती। आज असल में वो विजिट कर रही थी फैमिली मेंबर्स ऑफ अ डिसीज पीटीआई वर्कर ताजुद्दीन, और उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी तकलीफ जो है वो समझ सकती हूं, और ये जो सारी डेथ्स हुई हैं उनको भी मैं समझ सकती हूं। खान जो है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं जाके सारे लोगों से जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं या जो भी घर का मेंबर खोया है उसके साथ जाके मैं बैठूं और उनको तसल्ली दूं। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल किसी को ना खान छोड़ता है ना मैं, और मैं तो इसलिए वहां से लोगों ने जब मुझे कहा कि जी ये भी भाग गई थी और वो सारे भागे, मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि मैं भाग जाऊं, लेकिन जो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी गाड़ी कौन सी है वहां पे डी चौक में, और मैं अकेली खड़ी रही वहां पे 12:30 बजे तक, लेकिन कोई भी मेरा साथ देने को नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है फिर चूंकि लोगों को जो है फोर्सफुली वहां से डी चौक से निकाला जा रहा था और बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी वहां पे, तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। क्यों बाजी तुहाडे कोल ते ओ अली अमीन गंडापुर सन तुहानू बचा के उधरों लैके गए, वट इज दिस? तो फिर वो कहते हैं जी कि ये जो है ये हुआ, इसलिए फिर मुझे वहां से जाना पड़ा। और अली अमीन गंडापुर ने फिर सही कहा कि भाई हम पश्तून जो हैं अपनी मां बहनों बेटियों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनकी बेइज्जती भी नहीं हम करवा सकते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि बोले। तो वो कहते हैं जी मैं तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं रह गया था। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसने अप्रूव किया है पोस्ट अरेस्ट बेल ऑफ उमर अयूब खान एंड राजा बशारत, जिनको के अरेस्ट किया गया था इन वैंडलाइजेशन केस अ डे अर्लियर। रावलपिंडी पुलिस जो थी उन्होंने इनको और तीन दूसरे जो पीडीआई के ऑफिशियल थे उनको पकड़ा था अडियाला जेल के बाहर। एडीसी के जज अमजद अली शाह ने ऑर्डर दिया था सदर एसपी नबील अहमद खोकर को कि वो प्रोड्यूस करें इन पांचों सस्पेक्ट्स को कोर्ट में 7:30 PM ऑन द डे ऑफ द अरेस्ट, लेकिन पुलिस जो थी उसने जज के चूंकि ऑर्डर्स नहीं माने तो फिर कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस जो है एसपी को दिया क्योंकि वो डेडलाइन पे नहीं आया, और आज जो उनको कहा कि 9 बजे तक सुबह लेकर आओ। अयूब और बशारत और अहमद नसीर चट्टा जो हैं वो ये जो इंजरा पुलिस स्टेशन है अटक में उसके अंदर इनके खिलाफ केसेस लिखाए गए हैं, हसन अब्दाल पुलिस स्टेशन में भी लिखाए गए हैं। राजा माजिद दानियाल और मलिक अजीम जो हैं उनको भी डिटेन किया गया था इन केस फाइल्ड इन धमियाल पुलिस स्टेशन। इसके अलावा पांच ये जो नाम थे इनको जो November 24 के जो प्रोटेस्ट हुए थे उस सिलसिले में इनके नाम आए थे सामने। तो जेल से बाहर आने के बाद उमर अयूब ने मीडिया को बताया कि मुझे इलीगल डिटेंशन में अडियाला जेल में रखा गया था, अडियाला जेल पुलिस पोस्ट में रखा गया था, और मुझे गलत तरीके से उन्होंने अरेस्ट किया, झूठा मेरे पर केस डाला, और थैंक गॉड के जो कोर्ट है उसने मेरा बार्गेन प्ली जो है मेरा प्ली जो बेल प्ली है उसको माना है। आज जनाब इंडिया फिर से भड़का हुआ नजर आया पाकिस्तान पे। इंडिया ने आज डिमांड फिर से किया पाकिस्तान को कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्शन जो है आपसे चाहते हैं अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने अभी रिसेंटली एक पब्लिक स्पीच की है इन भावलपुर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा जी कि अगर तो ये रिपोर्ट सच्ची है जैसे कि दिखाई जा रही है तो पाकिस्तान की जो डबल फेस है वो हमारे सामने आ गया है। एक तरफ तो वो कहता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये टेररिस्ट जो है ये स्पीचें देता फिर रहा है। उन्होंने कहा जी कि इसके खिलाफ एक्शन लो और जो है पाकिस्तान इस हमारी बात सुनता नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज में इंडिया पे जो है इन्वॉल्व है। जो रिपोर्ट्स इंडिया कह रहे हैं हमें मिली है कि अजहर ने पहली दफा एक स्पीच की है 20 ईयर्स इन फ्रंट ऑफ जेईएम मेंबर्स, और ये जो ऑटोमन एम्पायर जो 1924 में कलैप्स कर गई थी उसका हवाला उन्होंने देते हुए कहा कि जैसे पहले मुस्लिम वर्ल्ड को हम जो थी वो रूल करती थी दुनिया की, वैसे ही हम करेंगे और हम वॉर वेज करेंगे अगेंस्ट इंडिया एंड इसराइल और एक ग्लोबल इस्लामिक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे। ये जो है अजहर साहब, इनकी स्पीच के ऊपर जो है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है, पता नहीं चल रहा है कि ये डेट और लोकेशन इनकी स्पीच की क्या है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि इंडियन इंटेल ऑफिशियल के साथ जो मीडिया की बात हुई है किसी की जिसका के नाम नहीं उन्होंने कोट किया, उसने बताया कि ये स्पीच लास्ट मंथ उमुल कुरा के अंदर सिमेट्री में की गई थी और उस मॉस कॉम्प्लेक्स जिसके के अंदर जो भावलपुर के अंदर है, और ये जो था उसको उस वक्त जो है हाउस अरेस्ट किया गया था अजहर को जब इसने परवेज मुशर्रफ को 2003 में असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी और इसको डिटेन भी किया था 2001 टेरर अटैक में ऑन इंडियन पार्लियामेंट। तो भाईजान मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको क्यों आपने संभाल के रखा हुआ है, ये ऐसी कोई संभालने वाली क्या चीज है, खत्म आप इसको जो है किस्सा करें, जो भी आपने इसका फैसला करना है करो आप, ताकि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे कराओ। यार ये क्या मतलब तरीका है कि एक आप सही कह रहे हैं वो कि आप टेररिस्ट के कहते हैं एक तरफ कि हम खत्म कर रहे हैं, ऊपर से आप ये जो बंदा है अगर इसको एक्यूज है इन चीजों में तो आप इसको देखो क्या करना है। बीजेपी ने जी एक्यूज किया है इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी, उन्होंने कहा जी कि यूएस का जो ये डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं ये इंडिया की स्टेबिलिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं और इनमें एक हमारा राहुल गांधी भी है। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी ने कहा जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये यूज कर रही है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के आर्टिकल्स को टू फोकस ऑन अदानी ग्रुप, और ये जो है ये अलेज कर रही है कि इसका क्लोजनेस जो है मोदी जी के साथ है जिसकी की वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट को बैड नेम जाता है। गौतम अदानी और 7 जो अदर्स हैं उनको इंडाइट किया था आपको पता ही है लास्ट मंथ इन यूएस फॉर बींग पार्ट ऑफ 265 बिलियन स्कीम टू ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स, और ये एलिगेशन अदानी ग्रुप ने बिल्कुल इनको डिनाई किया था। OCCRP जो है उसको एक्यूज किया गया है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं इन इंडिया, और इनको कहा गया था इसने इन्होंने कहा था कि ये इजरायली मेड पेगासस स्पाइवेयर जो है वो भी इंडिया की गवर्नमेंट यूज कर रही है टू टारगेट द क्रिटिक्स, खासतौर पर जो बीजेपी के क्रिटिक्स हैं। बीजेपी ने आज इनको एक्यूज किया है कि गांधी और OCCRP और इनका जो बिलियनियर फाइनेंसर है जॉर्ज सोरस 92 ईयर्स उसकी एज है, वो कॉन्स्टेंटली इंडिया को और इंडिया की सलामती को और मोदी जी जो है उसको वो कर रहा है अटैक कर रहा है। संबित बत्रा बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट इस सारे एजेंडा के बिहाइंड है। उन्होंने कहा जी कि एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप जो थी उसने रिवील किया था कि इसका 50% जो इस ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट से आता है। भाई तो लड़ाइयां तो मुक ही नहीं रही हैं जी, ये की चक्करें हैं, पाकिस्तान से लड़ाई, बांग्लादेश से आज लड़ाई, फिर अमेरिका से लड़ाई, कनेडा हमारे मासूम से लड़ाई, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये हैं, क्या हो रहा है, गंदे बच्चों लड़ना बंद करो। और जनाब आमिर खान साहब का जो है एक इंटरव्यू उनसे अभी रिसेंटली किया गया है और उनसे पूछा है जी कि शाहरुख खान कहते हैं कि इंडियन फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता है तो आप इससे एग्री करते हैं? आमिर साहब की 2001 की जो फिल्म है लगान उसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स के लिए इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी। उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, लोग ये भूल जाते हैं कि जो इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरीज इन ऑस्कर्स और इसके लिए कम्पीट जो है दुनिया की तमाम दुनिया से बेस्ट फिल्में करती हैं और इसमें से सिलेक्ट किया जाता है टॉप 80 फिल्म को। तो उन टॉप 80 फिल्म में अगर आपने जो आती हैं ईरान से, जर्मनी से, फ्रांस से, सारी दुनिया से, वो टॉप फिल्म्स होती हैं तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपकी फिल्म को नॉमिनेट भी कर लिया जाता है तो भी इट्स अ बिग डील क्योंकि ये बेस्ट काम को ऑनर करते हैं। और जनाब आज आया है बड़ा ही सनसनीखेज किस्म का गाना जिसमें देखे जा रहे हैं सानिया मल्होत्रा और सिंगर जो हैं सुनिधि चौहान नाचते और गाते हुए, और लोग कह रहे हैं ये दोनों बड़े हॉट लग रही हैं क्योंकि सानिया नाच रही है और सुनिधि गा रही है, और वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दुनिया पागल हो गई है इंडिया में, वो कहते हैं लव यू और सॉन्ग भी जबरदस्त है, हालांकि मैंने तो सॉन्ग सुना इंतहाई थकेला सॉन्ग है, मुझे तो जरा नहीं पसंद आया। बहरहाल जी इंडिया में दुनिया काफी पागल है यानी कि इंडिया की दुनिया काफी पागल है, तो जो इंडिया में दुनिया यानी बस्ती है वो काफी पागल है, समझ गए ना। हाँ तो वो कह रहे हैं जी कि ये दोनों जो हैं ये हमारी देसी शकीरा एंड बियॉन्से हैं। वाह वाह वाह। और इस फिल्म का नाम है आंख है जी, तो आप ये आंखों से देखो बस, और किसी चीज से नहीं देखना आपने। और जनाब बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसने ये जो डेथ हुई थी अनुज थापड़ की, इसके अंदर जिसको के अक्यूज किया गया था फॉर फायरिंग आउटसाइड सल्लू भाई का घर, जिसने के कस्टोडियल डेथ में अलेजली कहा जा रहा है कि इसको मार दिया गया है, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें इस तरह के कोई भी प्रूफ्स नहीं मिले हैं। अप्रैल 14 को दो मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उन्होंने खान साहब का जो रेजिडेंस है बांड्रा में उसके ऊपर जो है फायरिंग की थी, तो पुलिस ने फिर अरेस्ट किया था विकी गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से और थापर को पंजाब से अप्रैल 26 को। फिर उसने कहा गया उसके बारे में, पुलिस ने कहा कि इसने सुइसाइड कर ली है ऑन May 1st ऑफ दिस ईयर। उसको देखा गया था कि वो टॉयलेट जो का जो कोई एक नॉब था ऊपर उससे लटक के तो लॉकअप में उसने अपने आप को मार लिया था। इसकी मां जो है रीता देवी, उसने कहा कि नहीं ये कस्टोडियल डेथ है, मेरे बच्चे को मार मार के और उसके ऊपर टॉर्चर करके इसको मारा गया है। और उसने कहा था कि मैं फाउल प्ले जो है स्मेल कर सकती हूं और मेरे बेटे का केस जो है CBI को दिया जाए क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकल असॉल्ट और टॉर्चर पुलिस ने किया था। अलबत्त कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास कोई रीजन नहीं है उसको फिजिकली असॉल्ट और टॉर्चर करने का, क्योंकि उसको हार्म करने के बाद या उसको मारने के बाद तो जो बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी पुलिस को इनके सारे गैंग के बारे में वो अब नहीं मिल पाएगी। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक मां का दुख क्या हो सकता है, लेकिन किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके सुसाइडल थॉट्स क्या हैं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये जुडिश कस्टोडियल डेथ है, ये हमको सुसाइड ही लग रहा है। ऐसे है जाहिर है भाई, सल्लू भाई इतना बड़ा बंदा है, उन बेचारे छोटे मोटे उसके सामने कहां खड़े हो सकते हैं जी। और जनाब ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल अपने कंट्री को डिफेंड किया इस डिसीजन को कि जिस वक्त वो अफगानिस्तान के साथ जो है ICC वर्ल्ड कप जो हो रहा था तो उसमें तो ये खेलते हैं लेकिन बायलैटरल सीरीज जो है ये नहीं खेलते हैं क्योंकि तालिबान क्रैक डाउन करता है विमेन स्पोर्ट्स के ऊपर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बर्ड ने कहा है कि हम बड़े प्राउड हैं अपनी पोजीशन के लिए जो ऑस्ट्रेलिया ने ली हुई है, और क्योंकि उनके ऊपर बड़े एक्यूजेशन लगाए गए थे कि आप लोग बड़े हिपोक्रेट हैं। हुआ यह है कि जो फॉर्मर ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बर्टले, उन्होंने कहा जी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना ही पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए तो उसको अगर वो वर्ल्ड कप के मैचेस से अलहदा नहीं होता है अफगानिस्तान से तो, और वो कहता है कि तालिबान क्लैंप डाउन करता है विमेन राइट्स पे, तो उसको बाकी के सॉरी उस अगर वो बायलैटरल सीरीज से कहता है कि हम नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के मैचेस से भी उसको अफगानिस्तान से खेलने से दूर रहना चाहिए। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि आप हमारी रिस्पेक्ट करें और हमारी पोजीशन को समझें। मतलब है क्यामत नहीं आ गई है, तालिबान कह रहे ऑस्ट्रेलिया को तुम हमें रिस्पेक्ट करो है भयन। हाँ, फिर वो कह रहे जी कि आप अल्टरनेटिव्स ढूंढो और ये पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर मत आओ और जो है ये, तो इसीलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स ने कहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, औरतों को खेलने नहीं दे रहे हैं तो जो ICC के मैचेस हैं उनमें तो हम खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे। लेकिन आज अफगान प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी तालिबान गवर्नमेंट को कहा है कि भाई औरतों को क्रिकेट खेलने दो जी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कुछ हरे होले कुछ रजामंदी आ रही है जी, अभी हमें मालूम नहीं है लेकिन आ रही है। होले 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 से हवा चलती है ना जी, तो बस वो होले होले से भी हवा चल रही है। और बोथ साइड जो हैं उसके ऊपर कहा गया है कि दोनों साइडें जो जब पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो इंडिया और इंडिया में मैचेस होंगे तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट्स खेलेगा इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में हो रही है February-March 2025 में। BCCI जो है उसने लग रहा है कि इन प्रिंसिपल अग्री कर लिया है, पहले तो वो मान नहीं रहा था। ये इवेंट जो है ये अब होएगा, यानी कि जो इनके मैचेस होंगे ये वाले जो कि ये इंडिया पाकिस्तान के ये अब न्यूट्रल वेन्यू UAE जाहिर है कि दुबई में होंगे। ठीक है जी, दुबई के साथ बड़ा प्यार है इंडिया का, भारत दुबई जगह भी ऐसी है तो वहां पे होएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाइड रहेगा 2027 यानी कि 2027 तक लड़ाई रहेगी इंडिया पाकिस्तान की। व्हाट इज दिस है। अच्छा, इंडिया जो है अब होस्ट कर रहा है विमेन्स ODI वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2025 एंड मेन्स T20 वर्ल्ड कप इन 2026 विद श्रीलंका। इसके ऊपर PCB ने इंसिस्ट किया है कि ये रेसिप्रोकेट करेगा हाइब्रिड अरेंजमेंट, यानी कि पाकिस्तान इंडिया और इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं आ रहा तो थर्ड वेन्यू पे ये सारे मैचेस होंगे। फाइनल अग्रीमेंट जो है वो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स जो एक्सपेक्टेड है। आईसीसी की मीटिंग जो है अब अक्टूबर 7 यानी कि कल होगी, उसमें जरा डिस्कशन होगा दुबई में और फिर इसके फॉर्मल अप्रूवल्स दिए जाएंगे और फिर ये बाइंडिंग होंगे तमाम आईसीसी मेंबर बोर्ड्स के ऊपर जो भी कोई फैसले आएंगे। ठीक है जी, हूं खुश हो। चलो अच्छा जनाब, जो बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन टूर के बीच में राइट आर्म पेसर हारिस रौफ ने जो परफॉर्मेंस दी थी उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है फॉर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2024। इसने हेल्प किया था पाकिस्तान को फॉर द हिस्टोरिक 2-1 ओडीआई सीरीज विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 22 ईयर्स। ये जो है टॉप विकेट टेकर था विद 10 एट इकोनॉमी रेट ऑफ 5 और इसकी जो ग्रेट फॉर्म थी इट कंटिन्यूड इवन इन T20 सीरीज, उसमें भी इसने 5 विकेट्स लिए थे इंक्लूडिंग 4 विकेट हॉल इन सेकंड T20 और इसने मंथ जो है रैप किया विद 3 विकेट्स इन ओडीआईज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ब्रिंगिंग हिज टोटल टैली टू 18 डिसमिसल्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन नवंबर। इसका बड़ा ही टफ वैसे जो था ना मैच पड़ा हुआ था जसप्रीत बुमराह के साथ, हैं जी पैर ये है। अच्छा, रोने की बात नहीं है इसमें आमिर, अगर तुम्हें पसंद है जसप्रीत बुमराह और वो नहीं जीता हाँ तो बस फिर ज्यादा बूथी ना बनाओ तुम, ठीक है ओके। अच्छा जनाब, इन ऑगरल सेशन एडिशन ऑफ चैंपियंस T20 कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है डबल हेडर के साथ ऑन सितंबर 7 यानी कि कल एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। यहां पे दिसंबर 7 हाँ मैंने क्या कहा, ओ नहीं नहीं दिसंबर 7 यानी कि कल से दिसंबर 7 से ये हो रहा है एंड इट इज पार्ट ऑफ द चैंपियंस टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस बाय पीसीबी अर्लियर दिस ईयर और ये रन करेगा दिसंबर 25 तक। इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इनके बीच में 22 मैचेस होंगे। ओपनिंग मैच जो है इमामुल हक के लायंस और इफ्तिकार अहमद के मार्कोर्स के बीच में होगा। सेकंड मैच होगा बिटवीन मोहम्मद हारिसेस लेड स्टैलियंस और शादाब खान पैंथर, फहीम अशरफ लेड डॉल्फिन्स जो है उनका मैच संडे को होगा अगेंस्ट पैंथर्स। पैंथर्स ने जो है फर्स्ट एडिशन जो है वो भी जीता था। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट टॉप टेबल टॉपर जो होगा आफ्टर डबल लीग स्टेज विल गो डायरेक्टली टू द फाइनल, सेकंड एंड थर्ड प्लेस टीम्स विल फेस ऑफ इन क्वालिफायर, फिर उसके बाद जो ये टीम्स हैं वो फिर हौले हौले आगे सेमीज और उसकी तरफ जाएंगी। ये जो टीम्स हैं दे आर बीइंग मेंटर्ड बाय सकलेन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शोएब मलिक, मिसबाउल हक एंड वकार यूनस। और जनाब इसी मौके पे ये जो चैंपियंस T20 कप जो है इसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इस पे सरफराज अहमद ने बड़ी कुछ दिल दुखाने वाली बातें की हैं। उन्होंने हिंट किया है कि शायद वो रिटायर हो सकते हैं। ये मेंटर कर रहे हैं आपको जैसे हमने अभी बताया कि जो है वो इसके अंदर वन ऑफ द मेंटर्स हैं और ये मेंटर करेंगे फहीम अशरफ की डॉल्फिन्स को इसके अंदर। तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि एज फार एज माई करियर इज कंसर्न देर इज नथिंग, मुझे पता है आप मेरे से क्या सुनना चाहते हो और जो है अब ये और आगे नहीं चलेगा। सरफराज अहमद जो है उन्होंने अपना डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इन 2007। इन्होंने 54 टेस्ट, 117 ओडीआई, 61 टी20 खेले थे। इन्होंने 6164 रन्स बनाए हैं, 6 जो है हंड्रेड बनाए हैं, 32 50 बनाए हैं। ये विकेट कीपर बैटर जो है इन्होंने पाकिस्तान को मेडन मेंस चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल इन 2017 जीत के दिया था विद 180 रन विक्ट्री ओवर इंडिया इन द फाइनल्स। इन्होंने कैप्टन किया पाकिस्तान को इन 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन्स और 11 दफा कोई भी और कैप्टन जो है पाकिस्तान का नहीं जिता सका है ये T20 सीरीज किसी जो है इनसे पहले। और इन्होंने जो लास्ट मैच अपना खेला था वो था टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। तो ये है जी हमारी आज की,
ये थी हमारी गरम गरम और खबरें। तो बहुत शुक्रिया आपका एज यूजुअल और हम उम्मीद करेंगे दो दिन की छुट्टी करें,
दो दिन
मंडे अब आपको मैं आपको दो दिन की पूरी पूरी छुट्टी दे रहा हूँ।
हाँ, मुझे फोन भी नहीं करना,
फोन भी नहीं करूंगा आपको,
खबरदार तुमने या जीशान ने मुझे कोई मैसेज,
हम तो करते नहीं, आप नहीं करिएगा किसी किस्म का मैसेज जो है वो नहीं करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, सामाईन नाजीन आपका भी अच्छा गुजरे। चलिए शायद जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें तो मंडे आपसे मुलाकात होगी। चलें जनाब, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आपका मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो मंडे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।